पृष्ठ संख्या 70। वे कहीं भी निरर्थक या अलंकार बनकर नहीं आए हैं, बल्कि नाटक का चरित्र का अनिवार्य हिस्सा बनकर। उद्यान से हंसों का कलरव और पंखों की फड़फड़ाहट वातावरण की सृष्टि भी करता है और चरित्र के द्वंद्व और नाटक के अर्थ को भी स्पष्ट करता है। यहाँ तक कि दूसरे अंक में प्रभात की शंख ध्वनि भी केवल प्रातः काल होने की सूचना ही नहीं देती, बल्कि आपने सारी रात बिना सोए ही काट दी। सुंदरी की निराशा, निद्रा, धुंधली मनः स्थिति और नंद की रात भर की बेचैनी का आंतरिक उद्वेग का भी संकेत कर जाती है। इसी प्रकार सुंदरी के माथे पर नंद के विशेषक लगाने की चेष्टा करते ही किवाड़ का खटखटा उठना, हवा का शब्द सुनाई देना, बंद किवाड़ का धीरे धीरे खुलना, नंद का द्वार के पास पहुंचते ही सहसा किवाड़ बंद हो जाना, खोलते ही कई कबूतरों के शब्द जैसा सुनाई देना, ये सब स्थल दृश्य श्रव्य का सुंदर सम्मिश्रण है। प्रभाव सृष्टि करते हैं, नंद के आंतरिक संघर्ष को संकेतों में स्पष्ट करते हैं। एक चौंकने वाली अस्त व्यस्त मनः स्थिति, प्रयत्न और प्रयत्न की असफलता, एक ही व्यक्ति का दो तरफ खींचा हुआ मन, राकेश की संवेदनशीलता, सूक्ष्मता और कुशलता से यही नहीं, इस अंक में दर्पण, चंदन लेप की कटोरी, विशेषक पदार्थ नहीं रह गए हैं, न श्रृंगार प्रसाधन में सहायक वस्तुएं, बल्कि नाटकीय द्वंद्व से जुड़ गए हैं। नंद और सुंदरी की मनोदशाओं में एकदम संपृक्त होकर महत्वपूर्ण हो गए हैं। बिना इनके वातावरण, नाटकीय अर्थ चरित्र खो जाएगा। दर्पण का हिलना, दर्पण का नंद की सांस से धुंधला होना, दर्पण का टूट जाना राकेश की सफल नाटकीय बिंब योजना का उदाहरण है। नंद के दुर्बल मन की अस्थिरता और द्वंद्व को व्यक्त करने का नाटकीय माध्यम, ऐसे कई बिंबों का प्रयोग राकेश ने किया है जो भाव स्थितियों को गहरे संप्रेषित करने में सफल हैं। उनके सुंदर बिंबों में घायल हिरण, अपनी ही क्लांति से, अपनी ही थकान से भरा हुआ मृग, नंद की ही मानसिक स्थिति का, मन की थकान का संकेत करता है। स्वयं अपने पन्नों में राकेश ने स्पष्ट किया है कि मृग का प्रकरण एक संकेत के लिए लाया गया है। जीवित रहने के लिए संघर्ष करता हुआ भी वह अपनी ही क्लांति से मर जाता है। यह परिणति मृग की नहीं, किसी को भी हो सकती है। नंद की दृष्टि से उसकी भी। इसी तरह व्याघ्र से युद्ध नंद की संशयग्रस्त मनः स्थिति को, चरम अंतर्द्वंद को, प्राणों की गहरी व्याकुलता और तनाव को व्यक्त करता है। दर्पण का टूटना भी नंद के आंतरिक संघर्ष को व्यक्त करने वाला बिंब है। हिंदी नाटक में ये सब प्रयोग अपनी सार्थकता को सजीवता में नवीन है। यूं तो पूरा नाटक ही संकेतात्मक है। कामोत्सव का आयोजन, सुंदरी के गर्व, आत्मविश्वास और स्वाभिमान की तीव्रता, नारी आकर्षण की तीव्रता को, यशोधरा के प्रति उनके स्पर्धा भाव को, उसके अहम को व्यक्त करता है। तो श्यामांग और अलका का प्रेम स्त्री पुरुष के बीच की भावना के दूसरे स्तर को प्रस्तुत करता है। यह भावना नंद और सुंदरी के आवेशपूर्ण वात्सनात्मक प्रेम से अलग है। साथ ही सारा प्रसाधन प्रसंग, उसमें भी विशेषक लगवाना, उसे सूखने न देना, अंत में नंद का उसे गीला करने का प्रयत्न, ये सब नंद सुंदरी की मनोदशा का पूरा संकेत करते हैं। बड़े ही काव्यात्मक ढंग से पृष्ठ संख्या 71। मदिरा का औंधा पात्र, बिखरी माला, फूल, अस्त व्यस्त बिछावन आदि सभी नाटकीय संकेत हैं। जो भीतर के अर्थ की खोज का परिणाम है। इस नाटक की प्रतीकात्मकता को लेकर काफी चर्चा हुई है। श्यामांग को नाटक में एक प्रतीक के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। श्यामांग नंद की संशयग्रस्त मनःस्थिति को प्रकट करने वाला पात्र है। एक माने में नंद का आंतरिक जगत श्यामांग की उलझनों और प्रलापों में निहित है। कोई स्वर नहीं है, कोई किरण नहीं है, सब कुछ इस अंधकूप में डूब गया है। सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। श्यामांग के ये सारे वाक्य नंद के मन में उठने वाले प्रश्न हैं। निश्चय ही इस स्तर पर राकेश की यह सूक्ष्म कल्पना है, लेकिन नाटक से पहले रूप में श्यामांग का प्रसंग इतना अतिरंजित लगता है, उसके प्रलाप इस तरह बार बार बीच में दोहराए गए हैं कि नाटकीय एकाग्रता ही नहीं टूटती, बल्कि कहीं कहीं वह चले आते हुए कथानक से अलग जैसा और उसके स्वाभाविक प्रवाह में बाधक सा लगता है। इसके अतिरिक्त नाटक को उलझाता भी है। प्रतीकों के प्रयोग में यह हमेशा स्मरण रखना होगा कि नाटक किसी एक व्यक्ति या विशिष्ट से ही संबद्ध नहीं होता, समूह परक होता है। इसीलिए पूरे समूह को एक साथ कलात्मक अनुभूति कराना उसका कर्तव्य होता है। दर्शक समूह अधिक प्रतीकों और पात्रों के गूढ़ अस्पष्ट कथनों को समझने की मनोवृत्ति में नहीं होता। श्यामांग के प्रतीक रूप पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं होने पर भी राकेश के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। उनमें अपने मन में ही श्यामांग को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहे हैं, जैसे नाटक में उसके संबंध में कोई नियम ही निर्धारित न हो। उसे नाटक से हटाना भी उनके लिए संभव नहीं था। आसपास की सारी व्यवस्था से अलग, सारे परिदृश्य में बाधा डालते हुए भी, जैसे वह उस परिदृश्य की संपूर्णता के लिए अनिवार्य हो। धीरे धीरे श्यामांग एक व्यक्ति नहीं रहा, एक आभास में बदल गया। नाटक के संशोधित रूप में श्यामांग एक प्रतीक पात्र होते हुए भी उतना बाधक नहीं है। वह नंद के मन की संकुलता को ही रेखांकित करता चलता है। उसका उन्माद बहुत सोचने वाले मन का संभ्रम है। प्रतीक दृष्टि से राजहंसों का प्रसंग भी नाटक को बोझिल बनाता है। राजहंस नंद और सुंदरी को स्पष्ट करते हैं। ओस से लदे कमलों के बीच राजहंस के जोड़े की किलोल सुंदरी को अपने और नंद के आकर्षक संबंध के आनंद जैसी ही लगती है। कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास आकर इनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहें, ये चोंच से चोंच मिलाकर एक बार चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती हुई लहरें जिधर ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगे। पृष्ठ संख्या 72। कहकर सुंदरी अपने विश्वास और परस्पर संबंध का ही संकेत करती है, लेकिन पत्थर फेंकने पर राजहंसों के पंखों की फड़फड़ाहट और आहत क्रंदन उन्हीं दोनों की मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। एक दूसरे के समानांतर होते हुए भी दोनों मानसिक रूप से अलग-अलग उलझे हुए हैं, द्वंद्व पीड़ित हैं। लहरें उन दोनों की परिस्थितियां हैं। सारे प्रतीक को सुंदरी के ये वाक्य ही स्वतः स्पष्ट कर देते हैं। परंतु राजहंस आहत थे, कम से कम एक उनमें अवश्य आहत था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वे अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते? फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? निश्चय ही एक आहत राजहंस नंद को ही स्पष्ट कर रहा है। विश्वास के साथ जिस नंद को नदी तट पर जाने दिया था, उसी के लौट कर न आने पर वह नहीं सोच पाती कि यह हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इसमें विश्वास नहीं होता और यह भी मन नहीं मानता कि किसी ने उन्हें इस प्रकार, यह पूरा प्रसंग ही प्रतीकात्मक है, परोक्ष की छाया है जिसके चेतन रूप से नंद निरंतर बचना चाहता है। छाया स्वयं छाया की प्रतीक है, वह छाया जो बराबर कमल ताल पर पड़ती दिखती है, जिसमें लहरें कमल ताल कमल पत्र सब गुम हो जाते दिखते हैं। मुझे लगा कि वह छाया धीरे धीरे उन सबको लील जाएंगी। ताल में तैरते हुए राजहंसों के जोड़ों को भी श्यामांग के ये वाक्य चारों ओर की स्थितियों पर, वातावरण पर, नंद के मन पर, सुंदरी के जीवन पर पड़ते हुए गौतम बुद्ध के दबाव को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। छाया पर पत्थर फेंकना ही नंद का उस छाया के चेतन रूप से बचने का प्रयत्न है। तभी न जाने कैसे उसने राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे वे चित्कार कर उठे। श्यामांग यह कहकर छाया के दबाव में विवश अव्यवस्थित नंद और सुंदरी को सामने लाते हैं। यह छाया मुझसे नहीं उड़ी जाती, यह छाया मेरे ऊपर से हटा दो। सारे संकेत नंद के अंतर्द्वंद के हैं कि वह गौतम बुद्ध द्वारा आरोपित मुक्ति पथ को स्वीकारना नहीं चाहता, लेकिन स्पष्टतः अस्वीकार भी नहीं कर पाता। इसीलिए उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। श्यामांग कहता भी है, यह घना गुमसुम अंधेरा, यह अंधेरा मुझसे नहीं सहा जाता। इस दृष्टि से श्यामांग से लेकर राजहंस और छाया के प्रतीक राकेश की सूक्ष्म कल्पना और अंतर्मन की पहचान के परिणाम हैं। लेकिन नाटक जैसी विधा में शायद अधिक प्रतीकात्मकता उस विधा की अनिवार्य मांग को बाधित करती है। फिर भी हिंदी नाटक को एक सार्थक सृजनात्मक अनुभव तक ले आने में यह राकेश के नाटक की अगली कड़ी है, और साथ ही तीव्र प्रतिक्रियाओं से पूरी तन्मयता के साथ जूझते हुए नाटककार की ईमानदारी का, तत्परता का, उदार मन मस्तिष्क का अपने में अकेला उदाहरण है।